नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत में गांव की प्लानिंग को थोड़ा गहराई से समझेंगे और हमारा फोकस रहेगा ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी पर। ये चर्चा श्रोता द्वारा भेजे गए कुछ स्रोतों पर आधारित है, खासकर एक पीडीएफ के चैप्टर 3 पर।
नमस्कार। हाँ, और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये है क्या, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जमीन पर कैसे काम करता है, यू नो, असली दुनिया में लोग कैसे जुड़ते हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे, और ये जो अलग अलग सरकारी योजनाएं हैं और टेक्नोलॉजी है, ये सब साथ में कैसे आते हैं।
बिल्कुल, मतलब ये देखना कि क्या ये बस एक और सरकारी रूल बुक है या सच में इससे गांव का कुछ भला होता है, लोगों को थोड़ी ताकत मिलती है। स्रोत तो यही कहते हैं कि कोशिश है कि योजना गांव वाले खुद बनाए और सोच समझ कर बनाए।
सही कहा आपने, और इसकी शुरुआत ना एक पूरी प्लानिंग से होती है, सिर्फ हवा में नहीं।
अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि कामयाब जीपीडीपी के लिए मल्टी लेवल अप्रोच होता है। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब है कि ये सिर्फ पंचायत ऑफिस में बैठ के नहीं होता, इसमें फील्ड में जाना पड़ता है, अलग अलग संस्थाओं को, मतलब डिपार्टमेंट्स को साथ लाना होता है, लोगों को शामिल करना होता है डिसीजन मेकिंग में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और सबसे जरूरी, जो दूसरी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं उनके साथ मिलके काम करना, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं, एक होलिस्टिक, मतलब एक पूरा नजरिया।
और इसमें कौन कौन शामिल होता है शुरू में, ताकि ये सिर्फ कागजी काम ना लगे? लगता है काफी लोगों को साथ लाना पड़ता होगा।
हाँ, कोऑर्डिनेशन तो देखिए बहुत जरूरी है। तो शुरुआत में ही डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे CDO, जिला परिषद CEO, DPO, BDO,
जी
इनकी GPDP टीमों के साथ मीटिंग्स होती हैं। और हाँ, पंचायत के सदस्य, सरपंच, समिति मेंबर और जो गांव में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो सब। मकसद ये कि भाई शुरू से सब एक पेज पर हो।
सुनने भी तो बड़ा सिस्टमैटिक लग रहा है, लेकिन अक्सर ऐसी सरकारी प्रक्रियाओं में आम आदमी की आवाज कहीं गुम हो जाती है। यहाँ लोगों की भागीदारी कैसे पक्की की जाती है, ये बड़ा सवाल है।
बिल्कुल सही सवाल है, और स्रोत बताते हैं कि इसके लिए कुछ ठोस कदम है। पहला, हर पंचायत अपना एक GPDP कैलेंडर बनाती है। इसमें ग्राम सभा कब होगी, महिला सभा कब होगी, बाल सभा कब होगी, ये सब डेट्स पहले से फिक्स होती हैं, तो लोगों को पता होता है।
पर सिर्फ तारीखें बताने से तो लोग नहीं आ जाते होंगे ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बाकायदा भागीदारी दृष्टि सत्र होते हैं, मतलब पार्टिसिपेटरी विजनिंग सेशंस, जहां गांव के लोग मिलकर सोचते हैं कि भाई हमें अपना गांव कैसा चाहिए आगे चलकर।
और एक और अहम चीज है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs और ग्राम संगठन VOs का रोल।
हाँ, वो VPRP का जिक्र था श्रोतों में, वो क्या है? VPRP यानी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, अब उसे शायद विलेज प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्लान कहते हैं, ग्राम समृद्धि योजना। ये प्लान SHG और VO लेवल पर, मतलब महिलाएं खुद अपनी जरूरतें देखकर पहले ही बना लेती हैं, और फिर इस VPRP को मुख्य GDP प्लान में शामिल कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पक्का होता है कि महिलाओं की जरूरतें प्लान का हिस्सा हैं।
और ग्राम सभा, क्या वो बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है?
कोशिश तो यही है कि ना रहे। स्रोत कहते हैं कि हर महीने ग्राम सभा करने पर जोर है, ताकि एक रेगुलर चीज बन जाए। इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, लोग जुड़े रहते हैं, महिलाओं की भागीदारी पर खास ध्यान। इतना ही नहीं, सारे सरकारी विभागों को फॉर्मल इन्विटेशन जाता है मीटिंग में आने का, और अगर कोई नहीं आता तो वो नोट किया जाता है जवाबदेही के लिए।
सही बात है। अब इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए लोगों के पास स्किल भी तो होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, उसके लिए GPPFT बनाए जाते हैं, ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल। इसमें सदस्य होते हैं CRPs यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं, सरकारी विभागों के फील्ड वर्कर होते हैं। इनको खास गांव और ग्राम सभा प्रोग्राम से जोड़ा जाता है, ताकि ये प्लानिंग में टेक्निकल मदद कर सकें।
अच्छा, और इन सब टीमों में आपस में तालमेल कैसे होता है?
उसके लिए ग्राम सभा से पहले GPCC यानी ग्राम पंचायत समन्वय समिति की मीटिंग होती है। वहां प्लान की टाइमलाइन, किसकी क्या जिम्मेदारी है, लोगों को कैसे जोड़ना है, ये सब तय होता है।
क्या पंचायतें एक दूसरे से भी सीखती हैं? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में?
हाँ हाँ बिल्कुल, नॉलेज शेयरिंग भी एक हिस्सा है। जिन पंचायतों को नेशनल अवार्ड मिला है, उनके काम की केस स्टडीज, वीडियोस शेयर किए जाते हैं। ये जो LSDGs हैं, लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे गरीबी मुक्त गांव, पानी वाला गांव, इन पर जानकारी दी जाती है, अच्छी पंचायतों के मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
ठीक है, तो लोगों से इनपुट ले लिया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, नॉलेज शेयरिंग हो गई, इसके बाद प्लान फाइनल कैसे होता है और ये जो संसाधनों के तालमेल की बात है, कन्वर्जेंस, वो कैसे काम करता है, ये दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, तो जब इनपुट आ जाता है तो हर गांव के लिए करीब 3 दिन रखे जाते हैं इंटेंसिव प्लानिंग के लिए। इसमें GPFFT, चुने हुए लोग, विभागों के लोग सब मिलके काम करते हैं। अब आते हैं रिसोर्सेज और कन्वर्जेंस पर, ये वाकई दिलचस्प है।
ये कन्वर्जेंस या अभिसरण आसान शब्दों में क्या है हमारे श्रोताओं के लिए?
आसान भाषा में समझें तो कन्वर्जेंस का मतलब है अलग अलग सरकारी योजनाओं और उनके फंड्स को एक साथ लाना किसी एक मकसद के लिए। मान लीजिए गांव में तालाब बनाना है तो हो सकता है मनरेगा से खुदाई का पैसा आ जाए।
अच्छा।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीज दे दे, फिशरी डिपार्टमेंट मछली के बच्चे दे दे, और शायद रिन्यूएबल एनर्जी वाला डिपार्टमेंट सोलर पंप लगा दे।
समझ गई,
ये हुआ कन्वर्जेंस। 4 अलग स्कीम मिलकर एक काम कर रही है।
तो ये सिर्फ पैसे का तालमेल नहीं है?
नहीं, ये उससे ज्यादा है। GPC लेवल पर एक रिसोर्स एनवेलप बनता है। इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स तो है ही, मनरेगा, 15वां फाइनेंस कमीशन ग्रांट, दूसरी स्कीम्स, CSR फंड, डोनेशन वगैरह, लेकिन साथ में ह्यूमन रिसोर्स भी हैं, जैसे CRPs, अलग अलग योजनाओं के फील्ड वर्कर्स।
और ये कन्वर्जेंस सिर्फ कुछ गिनी चुनी योजनाओं का होता है या दायरा बड़ा है?
कोशिश होती है कि दायरा बड़ा हो। GPC में जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं ताकि मनरेगा, NNRLM, आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोलर एनर्जी, PM कृषि सिंचाई योजना, सॉइल कंजर्वेशन, इन सबका तालमेल हो। असल में मकसद यह है कि रिसोर्स बिखरे नहीं, उनका बेस्ट यूज हो।
क्या स्रोत बताते हैं कि ये जमीन पर कितना कारगर है? कुछ राज्यों के उदाहरण हैं?
हाँ, कुछ अच्छे उदाहरण दिए, जैसे झारखंड ने GPDP को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, मतलब पक्का कर दिया है कि मीटिंग्स रेगुलर हों, डिपार्टमेंट्स आए। बिहार सफल मॉडल्स को प्रमोट करता है, लोगों को सीखने के लिए दूसरी जगहें भेजता है एक्सपोजर विजिट पर। मध्य प्रदेश ने LSDGs पर फोकस करके खास ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए हैं।
और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या होता है ताकि ये प्लान लोगों तक पहुंचे?
उसके लिए भी कई तरीके हैं। GPDP प्लान बनने के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर शेयर किया जाता है। लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद के लिए कैंप लगते हैं, आधार, बैंक अकाउंट, सर्टिफिकेट वगैरह। डिपार्टमेंट के लोगों को ग्राम सभा में बुलाया जाता है। वार्ड लेवल पर जरूरतें देखकर पंचायत संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर मदद मांगती है। जनसेवा केंद्र CSCs का इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन भरने में मदद के लिए।
वो छत्तीसगढ़ वाला उदाहरण काफी अच्छा था कन्वर्जन समझाने के लिए, तालाब और मछली वाला।
बिल्कुल, वो दिखाता है कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर एक परिवार की मदद कर सकते हैं। ये अलग अलग कोशिशों से कहीं ज्यादा असरदार हैं।
हमने महिला सभा और बाल सभा की बात की थी, स्रोत इन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये अलग क्यों हैं ग्राम सभा से?
ये इसलिए अहम है क्योंकि देखिए, अक्सर जो पारंपरिक ग्राम सभा होती है वहां महिलाओं और बच्चों की आवाज या तो दब जाती है या उन्हें मौका ही नहीं मिलता। महिला सभा और बाल सभा उनके लिए एक तरह से सेफ स्पेस हैं, जहां वो अपनी जरूरतें, अपनी परेशानियां, अपने आइडियाज बिना किसी झिझक के रख सकते हैं। ये लोकतंत्र को जमीन पर समावेशी, मतलब इंक्लूसिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
इन्हें कामयाब बनाने के लिए क्या खास तरीके अपनाए जाते हैं?
कई रणनीतियां हैं, जैसे SHG और VO मीटिंग्स के जरिए महिलाओं को जागरूक करना, स्कूलों में जाकर टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों से लगातार बात करना, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन SRLM के साथ मिलकर ये पक्का करना कि महिला सभा के प्रस्ताव नोट हों और GPDP में जाएं, बाल सभा के लिए स्कूलों को ही प्लेटफॉर्म बनाना, बच्चों के समझने लायक तरीकों से बात करना।
स्रोत में एक बहुत ही अनोखी बात थी कि बाल सभा के वक्त टीचर नहीं होने चाहिए, ऐसा क्यों?
हाँ, ये वाकई में इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्रोत कहते हैं कि मकसद यह है कि बच्चों को एक ऐसा माहौल मिले जहां वो बिल्कुल फ्री होकर बिना किसी डर या झिझक के बोल सकें। शायद टीचर्स के ना होने से उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और वो प्लानिंग में और खुलकर हिस्सा ले पाते हैं।
अरे वाह, और इन सभाओं को सिर्फ बातचीत तक ही नहीं रखते होंगे, फैसलों तक कैसे ले जाते हैं?
से जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। बाल सभा में भी सांप सीढ़ी जैसे खेल हो सकते हैं और चर्चा बच्चों के मुद्दों पर होती है, स्कूल, हेल्थ, खेलने की जगह, सेफ्टी। और सबसे जरूरी, इन सभाओं के प्रस्तावों पर बाद में मीटिंग होती है ताकि वो फाइनल GDP में शामिल हो सके। इसमें ट्रेंड फैसिलिटेटर, जो अक्सर VO लीडर या CRPs होते हैं, वो मदद करते हैं।
अच्छा, इतनी सारी योजनाएं, मीटिंग्स, प्रस्ताव, इन सबको ट्रैक कैसे करते हैं? वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल का क्या रोल है इसमें?
ई ग्राम स्वराज EGS पोर्टल यहाँ बहुत क्रिटिकल हो जाता है। GDP बनाने की सारी मेहनत का असली फायदा तब है जब वो प्लान इस पोर्टल पर दर्ज हो। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पंचायत के सारे डेवलपमेंट काम, उनका बजट, सब कुछ थीम के हिसाब से देखता है।
इसका फायदा क्या है आम आदमी के लिए?
देखिए, कई फायदे हैं। एक तो ये पंचायत और ग्राम सभा के लिए एक रिकॉर्ड बन जाता है, वो देख सकते हैं कि टाइम के साथ क्या प्रोग्रेस हुई। दूसरा और ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये जानकारी पब्लिक है, कोई भी देख सकता है।
अच्छा,
इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ती है और जवाबदेही भी, इसलिए योजनाओं का ईजीएस पोर्टल पर सही से और टाइम पर अपलोड होना बहुत जरूरी है।
तो ये डेटा एंट्री वगैरह ठीक से हो, इसके लिए क्या करते हैं?
इसके लिए VLEs होते हैं, ग्राम स्तरीय उद्यमी या MIS ऑपरेटर्स, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, रेगुलर अपडेट करना होता है, टाइमलाइन सेट करनी होती है, मॉनिटरिंग करनी होती है। और जो दिक्कतें आती हैं डेटा एंट्री में, जैसे कोई एक्टिविटी लिस्ट में नहीं मिल रही या बजट मैच नहीं कर रहा, उसके लिए भी ट्रेनिंग और सपोर्ट होता है।
ठीक है, आखिर में स्रोत योजना बनने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसे लागू करने के भी कुछ स्टेप्स बताते हैं, क्या आप थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं?
हाँ, वो ये दिखाता है कि प्लान को हकीकत में बदलने का भी एक प्रोसेस है। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा यूज करना है तो कई स्टेप्स हैं, रिकॉर्ड खोलना, NOC लेना, एस्टिमेट बनाना, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फिर एक लाभार्थी समिति बनती है काम देखने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क ऑर्डर निकलता है, साइट पर बोर्ड लगता है, MB बुक में एंट्री होती है, प्रोग्रेस ऑनलाइन अपलोड होती है, PFMS से पेमेंट होता है, और आखिर में जो बना उसकी जियो टैगिंग होती है।
और अगर मनरेगा के साथ मिलकर काम करना हो तो?
उसके लिए भी सिमिलर प्रोसेस है, उसमें नरीगा सॉफ्ट करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें रिकॉर्ड जाता है, जियो टैगिंग होती है, मतलब GPS लोकेशन के साथ फोटो, हफ्ते में पेमेंट होता है, सोशल ऑडिट होता है, सामान खरीदने के भी नियम है ट्रांसपेरेंसी के लिए, छोटी खरीद डायरेक्ट, थोड़ी बड़ी के लिए कोटेशन और ज्यादा बड़ी खरीद के लिए ओपन टेंडर।
तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि ये ग्राम पंचायत विकास योजना या GPDP एक काफी डिटेल्ड और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रक्रिया है। कोशिश है कि लोग शामिल हों, खासकर महिलाएं और बच्चे, अलग अलग योजनाओं और रिसोर्सेस को जोड़ा जाए और ट्रांसपेरेंसी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो।
बिल्कुल, महिला और बाल सभा जैसे तरीके आवाज देने की कोशिश करते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पारदर्शिता और ट्रैकिंग के लिए है, और कन्वर्जेंस की जो बात हमने की वो बिखरे हुए संसाधनों को एक साथ लाने की कोशिश है, और जो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स हैं वो दिखाते हैं कि काम करने का भी एक तय तरीका है।
पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, ये इतनी डिटेल्ड और सिस्टमैटिक प्रक्रिया कागजों पर तो शानदार लगती है, लेकिन क्या ये वाकई गांवों के हर इंसान तक, खासकर सबसे पीछे रह गए लोगों तक कोई पॉजिटिव बदलाव ला पा रही है? स्रोत प्रक्रिया बताते हैं पर असर का क्या?
हाँ, और इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये मॉडल सिर्फ एक प्रोसेस बनकर रह गया है, या ये सच में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है? क्या यह सिर्फ खानापूर्ति है या सच में लोगों को ताकत दे रहा है? इन सवालों पर सोचना जरूरी है।
बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।